श्रीमद् भागवतम अध्याय एक प्रथम स्कंद अध्याय नौ शीर्षक भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग श्लोक क्रमांक 14। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। अनुवाद। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, इस ब्रह्मांड के भीतर का काल नियंत्रण सारे अंतरिक्ष में भी उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में है। सारे बड़े बड़े लोक जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल पर उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार बादल वायु के वेग से इधर उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अनिवार्य काल भी वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा नियंत्रित है। जो इस भौतिक जगत में भगवान का सबसे शक्तिमान प्रतिनिधि है, अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म के पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी प्रकृति की दशा को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहां तक कि ब्रह्मांड के नियंता ब्रह्मा जी तक काल के वश में हैं। अतएव जो धर्म का असली पालक है, उसे काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णजयतुल्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभा सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण पिछले हफ्ते श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के 8 भक्त जो कई सालों से अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं एक विमान से नेपाल में हिमालय की चोटी पे मुक्तिनाथ की ओर प्रयाण कर रहे थे। और उनका जो विमान है वो अपघात में पड़कर 21 लोग जो विमान में थे उसमें 15 लोगों की मृत्यु हो गई और उनमें ये 8 के 8 भक्त मारे गए। उनमें से एक ब्रह्मचारी थे और 7 3 परिवार के सदस्य थे, माता पिता और लड़का। एक परिवार के 2 नौजवान लड़के, 2 ही लड़के उनके मां बाप के, एक शायद 24 साल का और दूसरा 26 साल का। और एक परिवार की माता जी और उनकी नौजवान लड़की 18-19 साल की। तो ये जब खबर पहुंचा सारे भक्त समाज के सदस्यों को तो सबके मन में यही प्रश्न उठा कि भक्तों के जीवन में ऐसा क्यों होता है। भक्त तो भगवान की शरण जाते हैं, प्रामाणिकता से शरण जाने का प्रयास कर रहे हैं, कई सालों से नाम स्मरण कर रहे हैं और भगवान तो चाहते हैं कि सब व्यक्ति भक्ति करे, ये भक्त हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों होती, कैसे होती, कैसे समझा जाए इसको। और जो चले गए वो तो दूसरी बात, जो बाकी बच गए उनकी परिस्थिति क्या, जो परिवार में माता पिता और एक लड़का, वो भी नौजवान लड़का, वो भी उनकी दो लड़कियां हैं, वो बच गई हैं, एक का विवाह हुआ है दूसरा नहीं, उस परिवार में भी वो एक ही है, बड़ा बंगला है वो अकेले भी। तो जब इस परिस्थिति को अपने एकदम पास से देखते हैं और खास करके उनका शरीर आया, शरीर को देख भी नहीं सकते, पता नहीं किस तरह से वो बुरी तरह से, प्लेन क्रैश मतलब ज्यादा कुछ बचता नहीं है, तो वो जब परिस्थिति देखते हैं दूसरे भक्तगण, स्वाभाविक रूप से वैष्णव का हृदय बहुत कोमल होता है, काफी दुख पहुंचता है और वो विचार करने लगते हैं कि ऐसा क्यों, किस तरह से इसको समझा जाए। तो यहां भीष्म पितामह जो द्वादश महाजनों में एक है, 12 महाजन हैं जो भगवान के जो नियम है, इस संसार का नियम है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा, धर्म का जो तत्व है वो बहुत समझ पाना बड़ा मुश्किल है, पर महान भक्त जो हैं जिनमें भीष्म पितामह एक है, वो अपना निष्कर्ष बता रहे हैं पांडवों को। अभी भक्त हम कह सकते हैं कि अच्छे भक्त थे, पर पांडवों जैसे भक्त कोई है कोई तुलना में, जिनके यहां भगवान आते जाते थे, भगवान जिनकी सेवा करते थे, पार्थ सारथी जिनके निर्देशन में दूत बनकर वो पांडवों के प्रतिनिधि बनकर हस्तिनापुर जाकर कौरवों से बातचीत किया, शांति दूत बन के गए। तो भगवान जिनके दूत बनते हैं, जिनके मित्र हैं, जिनके सुहृद हैं, शुभ चिंतक हैं, मंत्रणा देते हैं, इतने महान भक्त, और आप और हम देखते हैं उनके जीवन में केवल दुख ही दुख, कई बार मरते मरते बच गए। कुंती महारानी एक जगह बोलती भी है कौन कौन सी परिस्थिति से वो गुजरे, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनान असत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृढ़े मृढ़े नेक महारथास्त्र तो द्रोण्यस्त्र तस्चास्म हरे भी रक्षिता। एक 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 करके गिनती करती है वो, कितने बार मौत के मुंह में जाकर बाहर आए, विशान भीम को विष पिलाया गया, जन्मदिवस में केक खिलाते ना, हैप्पी बर्थडे, तो ऐसे भीम को जब दुर्योधन ने लाके दिया, तेरे लिए केक, भीम खाता बहुत है तो उसको एक फर्स्ट क्लास बड़ा केक बना के लाके दिया और उसमें इतना विष डाला था जो 100 लोगों को मार सकता है, और भीम तो सोचा ही नहीं, पूरा मुंह में डाल लिया और लेट गया आराम से। विशान महा विष 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 पिलाया गया, महाग्ने पांचों पांडव कुंती महारानी के साथ उनको लाक्ष ग्रह में भेज दिया गया, बोले तुम लोगों को थोड़ा पिकनिक के लिए हम लोगों ने एक अच्छा घर बनाया, थोड़ा आराम करके थोड़ा पनाड़ा में जाओ, हवा खा के आओ, लाक्ष ग्रह में भेज दिए, और जब वहां ठहरे हुए थे रात को आग लगा दिया महाग्ने। फिर वहां से बच के निकले तो हिडिंब राक्षस, उसकी बहन के साथ आक्रमण किया उसने, हिडिंबा के साथ पुरुषाद दर्शना, और फिर असत सभाया, कुरु सभा में, भरी कुरु सभा में जहां केवल पुरुष लोग बैठे हुए हैं और वो भी रिश्तेदार लोग बैठे हुए, सब रिश्तेदार हैं, उनके बीच में उनकी वधु, पुत्र वधु को सामने खड़ा करके निर्वस्त्र किया गया। अब सोचिए कौन सी स्त्री है, कोई एक वेश्या है, उसको भी यहां अगर लाके खड़ा किया जाए वो भी हिचकिचाएगी इतने लोगों के सामने। ये कौन है? द्रौपदी महाराज सम्राट है, उनकी पत्नी रानी महारानी, और ऐसे स्त्री को, ऐसे पतिव्रता स्त्री को बीच में ऐसे ला के भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रत। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और उसमें पकड़े गए तो फिर से, पहचाने गए तो फिर से 12 साल, 12 साल वन में जाना हमको अच्छा लगता है अगर 12 घंटे के लिए जा रहे हैं तो, सुबह जाके वन में जाके अच्छा देखा, रात होने से पहले आ गया ठीक है, पर 12 साल तक रहना मृढ़े मृढ़े अनेक महारथास्त्र तो, और बीच बीच में भी सब महारथियों को लेकर आक्रमण किया करता था, वहां भी वन में रह रहे हैं, वहां भी दुर्योधन का ईर्ष्या समाप्त नहीं हुआ, बोले वहां भी उनको तकलीफ देना, तो महारथियों को भेजता था। और अब कुंती महारानी कहती है द्रोण्य स्रतश्चास्म हरे भी, अब द्रोणी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने भी महा सबसे महान अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ दिया हमारे बच्चों पे। हरे भी रक्षिता, तो पर आपने किसी न किसी तरह से हमें बचा दिया। और ये पांडव इतने महान भक्त, उनके जीवन में ऐसा क्यों? अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितम न अर्हत क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताश्रय। भीष्म पितामह कहते हैं अहो कष्टम, ओहो कितना कष्ट उठाए तुम लोग, अहो अन्यायम कितना अन्याय, आपके जीवन में केवल कष्ट आया, आपके जीवन में केवल अन्याय आया, और किस लिए? यद्यूयम धर्मनंदना, क्योंकि आप धर्म का पालन कर रहे। जीवितम न अर्हत क्लिष्टम, ऐसे तकलीफ से गुजरे, कोई भी और होता तो कब का मर गया होता, पर आप सुरक्षित कैसे रहे? विप्र धर्म अच्युताश्रय, क्योंकि आपने विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण वैष्णव, वैष्णव धर्म और भगवान श्री कृष्ण अच्युत, इनका पूर्ण रूप से आश्रय लिए, और इसीलिए ये 3 चीजों ने आपको बचाया। तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं तात्पर्य में, ये 3 हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ये 3 का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। विप्र धर्म अच्युताश्रय, जो भी भक्तों का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय लिया है, धर्म का आश्रय लिया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का आश्रय लेता है निश्चित रूप से धर्म उसे बचाता है। तो ये 3 को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है किसी भी परिस्थिति में। पर सवाल ये उठता है कि पांडव तो बच गए, बल्कि उनको राज्य भी मिला, पर ये भक्तों का क्या हो गया? ये तो मारे गए। किस प्रकार का संरक्षण हुआ? ये भी धर्म का पालन कर रहे थे, एटलीस्ट बाहर से तो ऐसा साफ साफ दिखता है। कई सालों से जो ब्रह्मचारी गुजर गए इसमें, वो तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करते थे। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाए थे उन्होंने भगवान के लिए, हमेशा ड्यूटी वर्शिप। जितने लोग गए वो सब बहुत अच्छा ड्यूटी वर्शिप करते थे, काफी प्रायश सब लोग। तो ये कैसे मारे गए? ये कैसे, इसको कैसे समझा जाए? किस प्रकार इनको संरक्षण क्यों नहीं दिया भगवान ने? तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि संरक्षण होता क्या है। संरक्षण शरीर का, शरीर को कितना भी संरक्षण दो वैसे भी मारा ही जाएगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युहु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान गीता में कहते अर्जुन को, हे अर्जुन, दो चीजें शत प्रतिशत निश्चित है, आप चाहो या नहीं चाहो, मानो या नहीं मानो, जानो या नहीं जानो, तीन चीज, दो चीज तो निश्चित है। जातस्य ही, जातस्य मतलब जिसका जन्म हुआ है, ध्रुव, ध्रुव मतलब शत प्रतिशत गारंटी, एक चीज गारंटी है, कोई जन्म लिया तो एक चीज गारंटी है, वो इंजीनियर बनेगा, माहित नहीं, डॉक्टर बनेगा, बन सकता है, पैसा कमाएगा, हो सकता है, अच्छा है, भविष्य देख के या ज्योतिष देख के कुछ बोल सकते, पर किसी को ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं, एक चीज सबको गारंटी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। कोई ज्योतिष को दिखाना मैं मरूंगा, ज्योतिष दिखाने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में मैं बता दूंगा आपको, जितना पैसा देना मुझे दे दो, 100% जितने लोग यहां बैठे हैं मुझको भी मिलाकर, कोई व्यक्ति जीने नहीं वाला है, हाँ कब वो मुझे नहीं मालूम, ना मैं जानना चाहता हूं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरता है उसको जन्म निश्चित है, जन्म निश्चित है, जो जिंदा, जो जन्म लेता है उसको मृत्यु निश्चय है, और जो मरता है उसको जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य थे, ये बदलने वाला नहीं है, न तुम शोचि तुम अर्हसि, तो क्यों रो रहे हैं तुम? आज नहीं तो 100 साल के बाद मरेगा, मरना तो है ना, हाँ कोई नहीं मरने वाला फिर मर गया तो अरे रे रे, हम तो सोचते नहीं मरने वाला थे, कभी नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला मर गया, आत्मा मर गया तो रोने की बात है, पर मरता नहीं वो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो जो नहीं मरने वाला है उसके लिए क्यों रोना है, और जो मरने वाला है उसको क्यों रोना है? सरल सी बात है, मरने ही, हां पर अकाल मृत्यु हो गई ना, अपेक्षित नहीं थी, बुढ़ापा हो गया, अभी मरने वाला है, कभी भी सांस जाने वाला है, फिर ठीक है, तैयारी हो रहा है, मानसिक रूप से तैयारी है, दांत गिरा, बाल सफेद हो गया, 4 महीने से उठ ही नहीं पा रहे हैं, उठते तो बैठने मुश्किल है, समझ गया अभी जाने वाले, तैयारी कर रहे हैं, पर अकाल मृत्यु, और खास करके इस तरीके से, आई नहीं है तो आता है तो मैं गया, और जब आया उसको मृत शरीर आया, दुख होता है, शॉक लगता है, शॉक, क्योंकि अभी अपेक्षित नहीं था। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु निश्चित है, तो भक्त को ऐसा क्यों होता है? वो तो शरणागत था और भक्ति कर रहा है, वही तो भगवान चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर यहां भीष्म पितामह दे रहे हैं। बोले हर एक व्यक्ति भगवान के मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक से मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाते। ये भगवान की योजना के अंतर्गत हो रहा है, भगवान की योजना के अंतर्गत है ये। और भगवान की योजना किस तरह से होता है, किस तरह से समझ में आता है भगवान की योजना क्या है? काल के रूप में। काल जो है क्षण, एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक साल, एक एक महीना, एक एक युग, भगवान की जो योजना है वो दिखा रहा है। तो भगवान की योजना, कल की योजना क्या है, कल सुबह उठने के बाद पता चलेगा, अभी नहीं। दूसरों के लिए एक ही योजना है, अभक्तों के लिए एक ही योजना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। उनको भगवान हस्तक्षेप नहीं करते उनके जीवन में। जो भगवान की शरणागत नहीं है वो भगवान के बहिरंग शक्ति जो है माया है उसके अंतर्गत कर्म, काल कर्म, इसके अंतर्गत वो लोग काम कर रहे हैं। अपने अपने कर्म का फल मिलेगा, भुगतेंगे, मरेंगे। पर जो भगवान के भक्त हैं वैयक्तिक रूप से उनके जीवन में भगवान हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों किए, अकाल मृत्यु क्यों, एकाएक कैसे ले गए वो? हमें लगता है वो एकाएक है, हमें वो लगता है एकाएक है, पर उन्हें मालूम है सबसे भलाई हमारे किस चीज में है, हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जन्म से मृत्यु तक एक व्यक्ति को जानते हैं और सिर्फ उतना ही हम देखते हैं। उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या होने वाला, ये हम नहीं देखते। हम सिर्फ इतना ही देखते हैं और इसलिए हम समझ नहीं पाते। और इसीलिए हम पूछते ऐसा क्यों हो गया। पर जो उस व्यक्ति के करोड़ों 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 पिछले जन्म के सारे कार्य, उसकी अंदरूनी इच्छा क्या है हृदय की वो जानता है, उसके कर्म क्या है वो जानता है, और उसके शुभ चिंतक होने के कारण सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उसकी भलाई किस चीज में वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जानने के कारण वो जो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है वही करते हैं, वो ही करते हैं वो। ये विश्वास जिसको है वो व्यक्ति उसी क्षण, जिस क्षण ये साक्षात्कार हो गया उसको, उसी क्षण वो मुक्तात्मा है। क्योंकि वो समझ लेता है ये सब के पीछे भगवान का हाथ है, एक पत्ता नहीं हिल सकता उनके अनुमति के बिना। अगर वो हो रहा है मेरे जीवन में, निश्चित रूप से इसी में मेरी भलाई है, भले मैं नहीं समझ पा रहा हूं, भले मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों, अभी क्यों, मेरा तो इतना बड़ा बड़ा योजना बनाया था मैंने, क्या क्या प्रचार करूंगा, क्या क्या करूंगा, बहुत सारा प्रचार, बहुत सारा योजना मैंने बनाया था। मैं जब मॉस्को गया था रशिया में, ऐसे ही बड़ा पंडाल था, पंडाल में प्रवचन हो गया, प्रवचन के बाद जब बाहर आया तो एक माताजी आई, वो श्रीला भक्ति तीर्थ महाराज की शिष्या थी वो, तो बहुत क्रोधित होकर मेरे पास आई और उसने जोरदार ऐसे प्रश्न किया मुझसे, बोले मेरे गुरु महाराज पूरे विश्व में भ्रमण कर करके हजारों लोगों को भक्त बना रहे थे, इतना अच्छा अच्छा प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े राष्ट्र के नेताओं को प्रचार करके परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे और काफी हद तक यशस्वी थे, इतने सारे पुस्तक लिखे उन्होंने, उनको ऐसा क्यों हो गया, उनको कैंसर क्यों हो गया और वो कैसे गुजर गए, ऐसा क्यों किया भगवान ने। तो मनी मन मैंने सोचा मैं भगवान थोड़ी हूं, मेरे को क्यों पूछती हो आप, पर भावना भावुक होकर पूछ रही थी। तो मैंने कहा माताजी एक काम करो, आप ही के गुरु महाराज जो पुस्तक लिखे वो पढ़ो, अंतिम पुस्तक श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का अंतिम पुस्तक है डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मरो, ये पुस्तक का नाम है, मरने से पहले मर जाओ, मतलब शरीर की मृत्यु आने से पहले अहंकार को मार डालो। ये माया जो है, जनस्य मोहोयम अहम, मैं ये शरीर हूं, ये सब मेरा है, इसको खत्म कर डालो, उसी दिन तुम मुक्त आत्मा हो। मरने से पहले मरो लिखते हैं, अहंकार को मरो, अज्ञान को मरो, और तब तुम जीवित हो जाओगे। और वो जो जीवित होना, आध्यात्मिक रूप से जीवित होना, उस व्यक्ति को कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। जो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है, वो मुक्तात्मा है। तो वो लिखते हैं एक सुंदर उदाहरण और एक सुंदर तरीके से लिखते हैं। वो लिखते हैं भगवान तीन प्रकार से कृपा करते हैं, भगवान की कृपा तीन तरीके से आती है हमारे जीवन में। पहला तरीका कैसा है, बोलते हैं पहला कृपा सामने से आने वाली कृपा। सामने से आने वाली कृपा, ये ऐसा कैसी कृपा, आप भगवान के सामने जाके कहते हो कि प्रभु मैंने अच्छा से एग्जाम में किया है, सचमुच में आप मुझे कृपा करना चाहते हो, तो कम से कम 92.5% मिलना चाहिए मेरे को, अगर मिल गया ना सचमुच में मैं समझूंगा आप बहुत बड़ी कृपा की हम। और अगले दिन कंप्यूटर में चेक किया, राधा गोपीनाथ दास 92.5%। आह प्रभु क्या, मैं जानता था, मैं देख रहा था, मैं सोचा था, मुझे मालूम था आप सचमुच में हो, प्रभु आप हो, धन्यवाद। इसको कहते हैं सामने से आने वाली कृपा। आपने मांगा, आपने अपेक्षा किया, आपने याचना की, आप देख सोच रहे थे ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा, ऐसा ही मिल गया। इसको कहते हैं सामने से आने वाली कृपा। ये सब स्वीकार करते सब लोग और अच्छा लगता है लोगों। फिर वो बोलते हैं बगल से आने वाली कृपा। बगल से आने वाली कृपा मतलब हम अपेक्षा नहीं किए थे, एक दिन बहुत भूख लग रहा है और ऐसे ही जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, बोले क्या करेंगे, ठीक है अभी मंदिर में दर्शन कर लेंगे और दर्शन के बाद जाएंगे घर में थोड़ा कुछ खिचड़ी बनाकर खा लेंगे, थक गया हूं, कुछ कुकिंग करने की भी इच्छा नहीं है पर क्या करें भूख भी लग रहा है, ठीक है मंदिर में जाके एक दर्शन कर लेंगे। और दर्शन करते ही 56 भोग का एक प्लेट भक्त लाके देता है, प्रभु जी वही सोच रहा था कोई भक्त आए उनको खूब भरपेट खिलाऊं। वाह प्रभु आप कितने कृपालु। इसको कहते बगल से आने वाली, मतलब अपेक्षित नहीं थी, आप इच्छा भी नहीं किए थे, आपको मालूम ही नहीं था पर लॉटरी लग गया, हे प्रभु कितने दयालु, वाह वाह वाह। वो बोलते हैं ये बगल से आने वाली कृपा। अब फिर अंत में बोलते हैं पीछे से आने वाली कृपा। पीछे से मतलब मुड़ के देखा तो भी दिखता नहीं, ये कैसी कृपा है, आप कभी इसकी याचना नहीं करते बल्कि चाहते भी नहीं ऐसा होए, प्रभु ये चीज कभी मत करना, वही हो जाता है। प्रभु भक्तों के बीच में हरिनाम लेते हुए ऐसा मेरा मृत्यु हो, पर बाद में गए कहीं रेगिस्तान में प्लेन गिर रहा है, अरे मर गया मर गया मर गया अभी, या कुछ ऐसा बीमारी हो गया, कहीं कोई ऐसा जगह में है जहां एक भक्त ढूंढने भी दिखता नहीं है, अभी मृत्यु होने वाली है, या कुछ बम विस्फोट हो गया वहीं टुकड़े टुकड़े होके मर गए शरीर। उस समय क्या उस समय भी धन्यवाद देंगे भगवान को, धन्यवाद प्रभु क्या दिया मुझको मृत्यु, कभी नहीं। तो जो अपेक्षित नहीं था, जो हम इच्छा नहीं करते थे, वह उस रूप से अगर आ जाए कृपा, तो क्या उस समय भी धन्यवाद प्रभु आप मेरे शुभ चिंतक हो, आप मेरे मालिक हो, आश्ली सेवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधा तुलंपटो मत प्राणनाथ अस्तु सह। आप जो भी दोगे, आप विष दोगे तो विष पीऊंगा, अमृत दोगे तो अमृत पीऊंगा, आप मेरे शुभ चिंतक हो, आप जो भी दोगे मुझे मालूम है मेरी अच्छाई के लिए दे रहे हो, मेरी भलाई के लिए दे रहे हो, इतना विश्वास है हमें। प्रहलाद महाराज में उनको विश्वास था, ये विश्वास प्रहलाद महाराज में था। और उनके अंतर्गत जितने सारे परंपरा में महान आचार्य हुए, इसीलिए तो आचार्य हुए क्योंकि ये चेतना रखते थे। तत्तेनुकंपम सुषमिक समाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद वाग वपुर भीर विदधा नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भगवत धाम जाने के लिए योग्य है, अभी जाने के लिए योग्य है, जिसकी हृदय में ये चेतना हो। तत्ते अनुकंपम सुषमिक समाणो, शुभ या अशुभ कोई भी चीज मेरे जीवन में आ रहा है वो आप ही की कृपा से आ रहा है, वो एक्चुअली आप ही की कृपा है प्रभु। कभी मां अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है और कभी उसको थपथपा के चूमती है ऐसा पकड़ के उसके गाल को, क्यों? दोनों उसके प्रेम का लक्षण है। कभी कभी चूमती है, कभी उसको गले लगाती है, कभी थपथपाती है और कभी कभी थप्पड़ मारती है। तो मूर्ख बच्चा जो है, अज्ञानी बच्चा, वो समझता है कि जब चूमती है, जब मुझे प्रेम करती है, जब मुझे थपथपाती है, गले लगाती है, ये अच्छी मां है, और जब थप्पड़ मारती है बहुत गंदी है। नहीं, वो मां वही है। और बेटे के लिए क्या भलाई उसको मालूम है, बेटे से बच्चे से ज्यादा उसको मालूम है क्या अच्छा है। तो ये भी प्रेम का लक्षण है, उसको थप्पड़ मारना भी प्रेम का लक्षण है। बगल के बच्चे को नहीं मारती, बगल घर के बच्चे को, मारने दो मैम क्या करेंगे, पर अपने बच्चे को मारेगी, प्रेम का लक्षण है। तो जिस व्यक्ति को सुहृदम सर्वभूतानाम, और खास करके जो अपने भक्त हैं उन पर तो वैयक्तिक रूप से भगवान हस्तक्षेप करते हैं, तो ये चेतना जिस व्यक्ति को है, जैसे नारद मुनि के पिछले जीवन में हम देखते हैं, नारद मुनि के पिछले जीवन में भक्ति वेदांत उनको आए थे, भक्ति वेदांत मिलके उन्होंने जाते वक्त उनको चार श्लोक सुनाया, जो भागवत के चार श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया था। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत सदसत परम, बोले इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं, मेरे से अभिन्न कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं, मेरी ही शक्ति है ये, हर कण में हर जगह में भगवान है और उनके नियंत्रण के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। जो ये व्यक्ति देखता है वो समझता है कि भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, पर जो कम श्रद्धा वाला होता है उसकी अपेक्षा होती है, ये ऐसा ऐसा करे ना प्रभु तो आप कृपालु हो, ऐसा थप्पड़ मारे ना तो आप अच्छे नहीं हो, कम बुद्धि वाले हो आप, आपको मालूम ही नहीं मेरे लिए भलाई क्या है, मैं बोल रहा हूं मेरी भलाई क्या है आप सुनते नहीं है, उल्टा भगवान को सुनाना। पर जो भक्त को विश्वास है वो ठीक है प्रयास करेगा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, इसके बाद भी जो हुआ इसका मतलब ये आपकी इच्छा है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, इतना विश्वास है उसको। इसीलिए अम्बरीश महाराज के सामने जब वो बड़ा दानव राक्षस आया, जिसको आपने दुर्वास मुनि ने निर्माण किया, अगर मरना अगर वो मारना ही चाहते भगवान इस तरह से मुझे, तो मैं कहां कहां भागूं, कहीं भी भागूंगा तो पकड़ेंगे मेरे को। हमने देखा दुर्वास मुनि कहां कहां भागे, छोड़ा नहीं, सुदर्शन पीछे पड़ गया उसका, उनका कहां कहां कहां, वैकुंठ में गए फिर भी पीछे, गरम गरम पीछे पीछे लग गया था, जला रहा था उनके शरीर को। पर अम्बरीश महाराज को विश्वास था अगर ये मारना, भगवान मारना ही चाहते हैं तो मैं कहां कहां भागूं, मैं वो मुझे मारना चाहे तो मैं क्या संरक्षण करता हूं, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी में जा सकता हूं, और वो मुझे बचाना चाहे तो क्यों किसी इंश्योरेंस में जाना, किसी और का इंश्योरेंस क्यों लेना, योगक्षेमम वहाम्यहम नहीं, दूसरे इंश्योरेंस कराना चाहिए, ठीक है अपना प्रयास, देखो भाई मैं कह रहा हूं, असली इंश्योरेंस उधर से। तो ये जिसको विश्वास है, तो मैंने माता जी को बताया भक्ति तीर्थ महाराज देखो ये लिखे हैं, वो कहते हैं एक्चुअली परम राधानाथ स्वामी महाराज जब उनसे मिलने गए थे जस्ट शरीर छोड़ने के दो तीन दिन पहले, ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो एक मतलब बहुत ही आनंदित, पूरा उनका शरीर मुस्कुरा रहा हो ऐसा लग रहा था, इतना बड़ा मुस्कुराहट उनका, मतलब जो हृदय से आया हुआ मुस्कुराहट, कभी कभी बाहर से मुस्कुराते ये नहीं, ये इतने ही बस, बड़ा सुपरफिशियल, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है पर क्या करे, वो मुस्कुरा दिया पर कभी कभी बहुत प्रिय व्यक्ति सामने आ जाए तो हृदय से मुस्कुराते तो लगता है, समझ में आता है कि सचमुच में मुस्कुरा रहा है, हृदय से मुस्कुरा रहा है, बहुत आनंदित होकर मुस्कुरा रहा है, ऐसा मुस्कुरा रहे थे वो। और राधानाथ स्वामी महाराज जी को उन्होंने बोला कि इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। बोले किससे बेहतर नहीं हो सकता महाराज, बोले इस स्थिति से बेहतर हो ही नहीं सकता, जो मैं अनुभव कर रहा हूं इससे बेहतर स्थिति हो ही नहीं सकता। बोले पूरे दुनिया में कोई भी अगर आके कहेगा महाराज मैं आपकी स्थिति और आपका सारा बीमारी मुझे दे दो, मैं आपकी स्थिति, बोले मैं नहीं चाहिए मेरे को, मैं किसी व्यक्ति से अपनी स्थिति को क्या बोलते हैं, आई वोंट ट्रेड, आई वोंट एक्सचेंज माई पोजिशन विथ एनी वन एल्स इन दिस होल वर्ल्ड, किसी से मैं बदलूंगा, अदले बदली नहीं करूंगा। क्योंकि वो बोल रहे थे कि उसी में मैं भगवान का आलिंगन देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं मृत्यु भक्त को भी आती है और अभक्त को भी आती है, पर दोनों की चेतना में जमीन आसमान का अंतर है। एक अभक्त के जीवन में कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, सब चीज हर लेते, जिस जिस को बना बना के पकड़ पकड़ के रखने का प्रयास कर रहा है सब चीज छीन लिया जाता है उससे। तो एक अभक्त के लिए जो कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण की शरणागत नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण मृत्यु के रूप में, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, सब छीन लेते हैं वो। और जो भक्त है, जो पूर्ण रूप से शरणागत है, मृत्यु उसके जीवन में कृष्ण के रूप में आती है और बोलती है आजा बेटा, बहुत तूने तकलीफ उठाया इस भौतिक शरीर से, बहुत सेवा किया और ये शरीर के कारण कितना तू तकलीफ उठा रहा है, आजा अब तुझे भौतिक जो सारे जो तकलीफ है ना इससे मुक्त करके एक ऐसा शुद्ध जीवन, एक ऐसा शरीर दूंगा जिसमें तू दिव्य आनंद के साथ मेरे साथ रहकर सेवा कर सकता है। दोनों को मृत्यु आ रही है, एक के लिए नरक का द्वार नजर आता है और दूसरे के लिए भगवत धाम का द्वार खुल रहा है, बैक होम बैक टू गॉडहेड, इसीलिए वो मुस्कुराता है क्योंकि जान रहा है कि कहां मैं जा रहा हूं। एक भक्त को मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, जब आपको मालूम है कहां जा रहे हो और वो जगह कितना सुंदर है तो स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हो आप। पर किसी को बच्चे को बोला तू अगर सुधरा नहीं तो तेरे को एक जगह भेजने वाला हूं, तेरे को एक जगह भी भेजूंगा, देख किधर, अभी बता, अभी नहीं बताऊंगा तेरे को, उसे जाने के बाद पता लगेगा, चल ये दरवाजा खोल पता चलेगा। अरे डर लगता है उसको, क्या आएगा पता नहीं, क्या आएगा, किधर भेजेगा पता नहीं, गड्ढे में गिराएगा या वो हाथी आएगा, शेर आएगा, क्या आएगा उधर, दरवाजा के उस तरफ क्या है मैं नहीं मालूम, जा तू अभी जा, तेरे को दिखाता हूं। जो शरीर के स्तर पर है, शरीर को सर्वस्व समझ के रखा है, उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ा भयानक चीज है। जब ध्रुव महाराज को मृत्यु आई, मृत्यु के सर पर पैर रख के विमान पे बैठ के वो भगवत धाम गए, मृत्यु के सर पर पैर रख के, मृत्यु एक सेवक के रूप में आया, प्रभु मुझे आप स्वीकार करो प्लीज, मुझे भी एक थोड़ा सेवा दो, आपकी सेवा जाने से पहले, चल तेरे सर पे पैर रख के तेरे को सीढ़ी बनाकर मैं भगवत धाम के वैकुंठ के विमान में बैठ के जाऊंगा। उनके लिए मृत्यु ऐसा आया। प्रहलाद नारद मुनि भी प्रथम स्कंद में लिखते हैं मृत्यु उनको कैसा आया, जैसे बादल गरजने, बिजली चमकने के बाद बादल गुड़ 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 आवाज आता है, पहले बिजली चमकती है उसके बाद आवाज आता है, इस तरह से जैसा बिजली चमक के बादल आया, जैसा वो भौतिक शरीर छोड़े तुरंत उनको एक आध्यात्मिक शरीर मिला, नित्य शाश्वत शरीर। अगर नहीं भी मिला, हम उतने शुद्ध नहीं है, फिर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान जो मेरे लिए अनुकूल स्थिति है वही डालेंगे, भक्तों के संग में डालेंगे, कहीं तो उनकी सेवा में लगाएंगे, कहीं तो उनका स्मरण होगा वैसी जगह में डालेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर कहते कि प्रभु कहीं भी डालो चलेगा, कीट जन्म हाओ यथा तू या दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही मोर आश, मुझे एक कीड़ा बनाओ चलेगा, पर भक्तों के घर में, भक्तों के आसपास, कुछ भी खाऊंगा तो वहां प्रसाद ही है वहां। तो ये विश्वास है भक्तों को, क्योंकि भगवान शुभ चिंतक है हमारे। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। बोलो अर्जुन, भक्त का नाश नहीं होता मतलब क्या? नहीं, नाश नहीं होता, उसकी भक्ति का नाश नहीं होता। सबसे बड़ा धन तो वही है, और सारा धन जो हम कमाए हैं वो वैसे भी मृत्यु के समय मरने वाला, मैं सब कुछ छोड़ने वाले हम लोग, पर ये धन जो कमाए, नेहा अभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्त का ये धन जो है ना, जो उसने कमाया है, भक्ति का धन, प्रेम का धन, वो भगवान कभी उससे छीनते नहीं बल्कि और उसको देते हैं। और भक्त को ये विश्वास है, जहां भी जाऊंगा सिर्फ एक चीज वो भक्त मांगता है और कुछ नहीं, भक्तों का संग है, भगवान आपका स्मरण रहे, आपकी सेवा का मौका रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुत्ते के जन्म डालो, बिल्ली के जन्म डालो, 84 लाख में कहीं भी, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वे, आप इतना करो प्रभु बस और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुत्ते बन के जीव चलेगा पर आपके भक्तों का खाया हुआ जो थाली है उसको चाटते रहो बस। तो ये भक्त का विश्वास है, और इसीलिए हर स्थिति में वो भगवान की कृपा को देखता है। तत्ते अनुकंपम सुषमीक्षमाणो, इक्षमाणो मतलब आतुरता से, क्या देंगे नहीं मालूम, ये चातक पक्षी जैसा, चातक पक्षी देखते रहती है बादल की ओर, बादल के गिरे हुए पानी के अलावा चातक पक्षी कभी दूसरा पानी पीता नहीं है, वो मर जाएगा पर दूसरा पानी नहीं पिएगा। चातक पक्षी की एक खासियत है, वो सिर्फ बादल से गिरी हुई बूंद उसी को पीती है वो बस, और कभी कभी बादल की ओर देखते रहती है तो एक ऐसा बिजली कड़क के उसके मुंह पे ठाड़ करके लगता है, फिर भी बादल की ओर ही देखती है, वो सोचती नहीं, अरे रंकाला है ना बगल में, बिस्लेरी का पानी है ना इधर बगल में, नहीं बादल का ही पानी। त्वई में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत, अनन्य किसी अन्य चीज नहीं, नहीं प्रभु आप ही, आपकी कृपा, और किसी का मैं आश्रय नहीं लूंगा, आश्रय लूंगा तो आप ही, भले थप्पड़ मारो किसी तरह से, बड़ा आपकी कृपा है वो। ये बहुत ऊंचा स्तर है, पर यही एक भक्त की इच्छा होती है। और ये इच्छा होने के कारण प्रहलाद महाराज तो बहुत महान भक्त हुए, भक्ति तीर्थ महाराज भी बहुत सारे बहुत ही ऊंचे स्तर के थे। पर छोटे मोटे भक्त जो हैं हमारे बीच में चलने फिरने वाले, ऐसे भक्तों के भी जीवन में हम देखते हैं। एक भक्त वृंदावन के हॉस्पिस, जो मतलब जो ऑलमोस्ट मरने के स्थिति में आ जाते हैं, मतलब गारंटी है कि शरीर छोड़ने वाले, एक ब्रह्मचारी शायद 33 साल का लड़का, वो रशिया का चैतन्य लीला ऐसा कुछ नाम है उसका, तो उनको एडमिट किए थे, शरीर छोड़ने वाले थे, उनकी इच्छा थी कि वृंदावन में मैं शरीर छोड़ूं। तो भक्त लोग वहां ले आए और वहां वृंदावन में एडमिट थे, और उनकी खासियत ये थी, 33 साल का लड़का, धीरे 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 शरीर सूखता गया एकदम, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता गया। तो काफी भक्त लोग आते थे उनको मिलने के लिए, अंतिम बार एक बार देखने के लिए, और थोड़ा मतलब सांत्वना देने के लिए कि चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो, कुछ तो बोलने के लिए कि होता है क्या करेंगे, सहन करो, ऐसा सोच के आते थे वो। और जब वो कमरे में प्रवेश करते थे, थोड़ा दुखी होके आते थे, बेचारा तकलीफ उठा रहा है, तो उनको ये व्यक्ति कहता था कि आप दुख मत हो, हरि नाम लो, मुस्कुराओ, जी दिया है ना, अच्छा से भगवान का नाम लो, उनको ये प्रचार करते थे। और वो व्यक्ति जाते वक्त एकदम उत्साह के साथ जाते थे, सही में, यस सही बात है, बोले मृत्यु कभी भी आ सकती है, हरि नाम लो। बाद में वो सोचते थे, अरे मैं उसको आश्वासन देने गया था, उसने उल्टा मुझे प्रचार किया। अंतिम समय तक ये चेतना एक मामूली साधारण भक्त है, ऐसा कोई महान भक्त ऐसा कुछ बड़ा प्रचार किया हो ऐसा कुछ नहीं, सिंपल ब्रह्मचारी। ये महाप्रभु की कृपा है, ये महाप्रभु, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम। क्योंकि कलयुग में क्या जीव है हम लोग, क्या श्रद्धा है हमारे पास, थोड़ा कुछ हो गया तो हरे कृष्ण भूल जाते हैं, ये हमारी परिस्थिति है। पर ऐसे लोगों को भी महाप्रभु ने इतना कृपा दिया है कि ऐसा स्तर जो सबसे भयभीत, मृत्यु सबसे बड़ा भयानक और डरावना चीज इस दुनिया में है तो मृत्यु, उससे भयानक कुछ ही नहीं। क्यों भय है मृत्यु का, क्यों भय है सबको? क्योंकि जैसा अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और कोई व्यक्ति आके तेरा पैसा छीन लूंगा, नहीं नहीं डर लगता है, कोई बोलेगा तेरा हाथ काट लूंगा, नहीं नहीं नहीं, बोले तेरा आंख फोड़ दूंगा, नहीं नहीं नहीं। मृत्यु का मतलब आंख भी ले लेना, पैर भी ले लेना, पैर पैसा भी ले लेना, शरीर भी ले लेना, धोती कुर्ता भी ले लेना, शरीर भी ले लेना। सबसे बड़ा भय मतलब जो कुछ भी मैंने जिंदगी भर कमाया, मेरे रिश्ते नाते, एक व्यक्ति हमारे पास से चला जाता है तो हमको कितना दुख होता है, हमारा एक प्रिय व्यक्ति चला गया कितना दुख होता है। पर जितने सारे प्रिय हैं वो लोग नहीं जा रहे, आप चले जा रहे हो तो सबके सब गए ना, सबके साथ संपर्क टूटने वाला, एक ही साथ, मां नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, बच्ची नहीं, ये नहीं, मामा नहीं, सबके सब एक साथ जाने वाले, क्योंकि तुम चले जाओगे अभी। एक व्यक्ति जाता है तो कितना दुख होता है, एक पैसा खो जाता है तो कितना दुख होता है, एक हाथ कट जाता है तो कितना दुख होता है, एक आंख चला जाता है कितना दुख होता है। सब कुछ एक साथ चला जाना, इसीलिए बोलते हैं 42,000 बिच्छू एक साथ काटा तो कितना दर्द, ऐसा दर्द मृत्यु का। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बहुत आसक्त है चीजों से, अगर ये कुर्ता मैं अच्छे तरह से बहुत समय से देख रहा हूं, ये कुर्ता बहुत अच्छा है, कुर्ता का किस दिन मैं खरीदूंगा, कभी कभी आदमी एक शोरूम के सामने से जाता है, टी शर्ट को देखता है, वाह क्या टी शर्ट है, हाँ कितना, 899 रुपया 99 पैसा, अभी मेरा कितना पैसा है, 8 रुपया है, ये महीना में 10 रुपया डाला, ये महीना ऐसा कमाते कमाते कमाते, आज डब्बा खोल के देखूंगा 899 रुपया 99 पैसा, आज वो टी शर्ट मिल जाएगा जिसके सामने मैं गधे के समान 50 भाई 2 महीने से घूम रहा हूं, और आप गए और उसको बोले ये लो भैया 899 रुपया 99 पैसा, वो वाला टी शर्ट, हाँ वही वाला करेक्ट, दो ना मुझे। दुकान के अंदर गए और पहने, पहन के आईने के सामने गए, आह आह, पीछे से भी देख सकता हूं क्या, आईना पीछे भी लगा के सब जगह से देखा, जितना देखते जा रहे उतना आसक्ति बढ़ रहा है, अभी ये मेरा है, ये हो गया, अभी मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा टी शर्ट है, वाह कितना सुंदर है, शोरूम से ज्यादा दिखता है, अभी अच्छा लग रहा है। और बोलते 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 शोरूम से बाहर निकलने वाले हो और दरवाजे के सामने एक खिल्ला लटका हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद जाता हूं, टर फट गया, आ अपना चमड़ा फटता तो इतना दुख नहीं होता जितना टी शर्ट फटने से होता है, क्यों, क्योंकि इसको पाने के लिए पूरा जीवन डाला है मैंने, और आज पाया तो फट गया मेरे आंखों के सामने। एक गाड़ी खरीदा, पूरा जिंदगी भर का सेविंग डालकर मैंने एक गाड़ी खरीदा, और वो गाड़ी चला रहा था तो एक पेड़ का डाल ढंग करके गिर के डेंट हो गया, आह हृदय के ऊपर डेंट हो जाता है, उसको उसको घसीट घसीट के रोते रहेंगे हम लोग, ऐसा क्यों हो गया। तो जितना आसक्ति रहता, जितना हमने पूरा जान डाला उसको प्राप्त करने के लिए, उतना जब वो चीज छीना जाता है, चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में ऐसा है, हर्ष शोक, जिस चीज को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा हर्ष मिला है वो चीज ले जाने पर सबसे ज्यादा शोक मिलेगा। अगर वो भोग करने के लिए हर्ष मिला है तो, पर जो समझता है कि प्रभु आज आपने शरीर दिया है तंदुरुस्त है ना आपकी सेवा में, कल नहीं है स्मरण करके सेवा, बस है तो सेवा करेंगे, नहीं है तो जिस स्थिति में है वहां से सेवा करेंगे। जो इन चीजों से आ सकते हैं, है तो सेवा करेंगे, नहीं है तो आज सेवा इस तरह से नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। इस तरह से जो निरासक्त है, निरासक्त होने का मतलब ये है तो भगवान की सेवा में, नहीं है तो ठीक है। ऐसे व्यक्ति को पाना और खोना दोनों बराबर है, ताम स्थिति क्षस्वभारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो अनित्याह ताम स्थिति क्षस्वभारत, सहन करो, आने वाला है जाने वाला भी है, ये एक एक सिक्के के दो पहलू है, क्या बोलते हैं, हेड्स एंड टेल्स, छापा और काटा, हाँ छापा और काटा। आप बोलेंगे छापा अच्छा लगता है, काटा अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता, केवल शोले में होता है कि छापा और छापा वो पिक्चर में होगा बस, सरकार ऐसा नहीं, काटा और काटा या छापा या छापे, छापा और काटा, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जीत हार, किसी के जीवन में केवल सुख सुख सुख, कभी दुख नहीं आया, ऐसा हुआ है कि केवल दुख दुख दुख, कभी सुख नहीं आया, ऐसा कभी हुआ है, केवल मान मान मान, थोड़ा भी अपमान नहीं, केवल अपमान, कभी मान नहीं मिला, कभी ऐसा नहीं हुआ है। काले से काले में थोड़ा सफेद दिखता है, जहां थोड़ा ग्रे कलर दिखता है मतलब सफेद है उधर थोड़ा, और सफेद से सफेद में थोड़ा तो कोई तो काला मार्क है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में थोड़ा बुरा है ये है, और बुरे से बुरे व्यक्ति में थोड़ा तो अच्छा ही कहीं तो होगा कुछ तो ऐसा। ये द्वंद्वों का संसार है, द्वंद्व आने वाली है, ताम स्थिति क्षस्वभारत, क्यों, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते, वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार है, अमृतत्व को पाने के लिए तैयार है। तो जितना हम इस भौतिक संसार से क्षणभंगुर चीजों से अपने भोग के लिए आसक्त हो जाएंगे, उतना ही वो स्थिति जाने पर दुख भी उतना ही होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों में नहीं फंसता, जो उपलब्ध है उसके अनुसार भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, नहीं है तो ठीक है जो है उसमें करेंगे। ये चेतना में रहे, तत्तेनुकंपं सुषमीक्षमाणो, और अगर उसमें भी कुछ बुरा हो गया तो प्रभु इससे करोड़ गुना ज्यादा मुझे चाहिए था, मैं ऐसा इतना क्या बोलते हैं नालायक हूं कि इससे करोड़ गुना ज्यादा मेरे को मिलना चाहिए, जिस प्रकार से मेरा, मैं जानता हूं मेरे अनर्थ क्या है, पर आप इतने दयालु, एक छोटा सा सैंपल दिए हो बस। आत्मकृतम विपाकम और हृद वाक वपुर भीर विदधान नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से हमेशा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थप्पड़ मारे धन्यवाद, थपथपाए धन्यवाद, आश्लीषेवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम, ये जो भावना आ गया जिस व्यक्ति के जीवन में, उसके लिए मृत्यु क्या और जन्म क्या, मुक्तात्मा है वो, जो भी है उसे स्वीकार करेगा। हालांकि इस चेतना में हम शायद नहीं हैं, पर फिर भी अगर प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हैं तो भगवान हमें शक्ति देंगे और वो बुद्धि देंगे। उस समय शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसाथ, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा शरण सार। क्योंकि एक भक्त प्रामाणिकता से प्रयास कर रहा है, एक भक्त बहुत अच्छे बोले बोले मैकेनिक जब वो क्या बोलते हैं बेंड हो जाता है ना डेंट, वो डेंट को निकालता है तो क्या करता है, ऊपर से ठोकता है और नीचे से उसको सपोर्ट देता है, सब पकड़, अच्छा पकड़ता है और बाद में ठोकता है, नीचे से सपोर्ट रखता है फिर ठोकता है। इस तरह से भगवान जब भी देते हैं ऊपर से ऐसा परिस्थिति, नीचे से हाथ भी रखते हैं, नीचे से ताकत देते सहन करने की। भक्तों के जीवन में यही अंतर है, ऊपर से कितना भी ठोकते हैं, ऐसा अच्छा मैकेनिक जो होता है उसको मालूम है इसको सीधा करना है ना, इसको ठोकना पड़ेगा, पर ठोकने के बाद नीचे नीचे ऐसा सपोर्ट दे देके सीधा कर देता है एकदम प्लेन। तो इस तरह से भक्त उसको देखता है अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये जब अगर हम समझ जाएंगे तब चाहे दूसरों के जीवन में देखे या अपने जीवन में हो, हालांकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं ऐसे आराम से खा पी के व्यासासन पर बैठ के प्रवचन देना बहुत आसान है, भाइयों संसार में बहुत तकलीफ है सहन करो, आई एक मिनट आया, एक मिनट अभी आया बोलना बड़ा आसान है, पर वही हमें हो गया तो क्या उस समय बोलेंगे, प्रार्थना करना है अगर कुछ हो गया तो आप लोग मुझे याद दिलाना कि प्रवचन में मैंने क्या बोला था आपको। पर यह सत्य है, चाहे हम साक्षात्कार किए हो या नहीं हो, पर सत्य है। और जिस हद तक यह सत्य, इफ यू आर लिविंग इन हार्मनी विद दिस ट्रूथ, इसको एटलीस्ट प्रामाणिकता से साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे, उस हद तक ये चीज अनुभव करेंगे और उस परिस्थिति में भगवान हमको बुद्धि देंगे, हमको वो शक्ति देंगे ताकि इस परिस्थिति से हम गुजरे। दुख होता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि शारीरिक रूप से अभी उस भक्त के साथ संपर्क नहीं है। भक्त भी रोते हैं, शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त जाने पर रोते हैं, हरिहर नहीं वो कौन सा है वो मनुष्य पाषाणे कुटीबो माथा अनाले पासीबो जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। भक्त भी रोते हैं, ऐसा रोते हैं कोई अभक्त नहीं रोता, इतना रोते हैं भक्त लोग। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पासीबो, मैं पत्थर पे सर पटक पटक के और अग्नि पे सर घुसा दूंगा मैं, इतना दुख होता है भक्तों को। क्यों? अगर शोक नहीं करते तो क्यों शोक कर रहे हैं? उनका शोक जो है अब संग नहीं मिलेगा, शारीरिक रूप से उनका संग नहीं मिलेगा, उनको देखने में कितना आनंद आता था, उनके मुख से डायरेक्टली सुनने में कितना आनंद आता था, उनके वैयक्तिक रूप से सेवा करने में कितना आनंद आता था, उनके मुस्कुराहट देख के कितना आनंद आता था। अब वो नहीं मिलने वाला, अब वो नहीं मिलने वाला। अब उनके सामने जाकर मैं कह सकता था कि मैं ऐसा किया हूं, वो संतुष्ट होकर मुस्कुराते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब वो नहीं मिलेगा। अब वो मुझे आलिंगन देते थे, अब वो नहीं मिलेगा। वो सोच के भक्त रोता है, बहुत रोता है कि ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे दयालु, अरे वो चले गए, अभी मैं कैसे जीऊंगा। शून्यायितम जगत सर्वम, मुझे किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा है। तो वो भी है, वो भावना है, पर वो भी एक प्रकार का उन्माद है, प्रेमोन्माद। वो भी एक प्रकार का उच्च कोटि का प्रेम का आस्वादन है वो, पर वो विलाप और ये जो विलाप है भौतिक संसार का, वो जमीन आसमान का अंतर उसमें। पर भक्त जानता हृदय से, जब हरिदास ठाकुर गुजर गए, चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर उठाकर नाच रहे थे, ऐसा कैसे भाई, रो रहे हैं और नाच भी रहे। हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर रो रहे हैं सब भक्त और पागल जैसे नाच रहे, आनंद भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। दुख किस लिए हो रहा है, अभी उनका संग नहीं मिलेगा, उन्हें देखने को नहीं मिलेगा, बार बार बातचीत करने नहीं मिलेगा डायरेक्टली, मोबाइल भी नहीं लगा सकते। पर आनंद इस चीज का है कि वो व्यक्ति भगवत धाम गए, भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं लगे। तो ये भक्ति का विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान। और जो ये समझ गया सौभाग्यशाली है, वो सच्चे आनंद, कई कोई भी परिस्थिति में वो संतुष्ट रहता है। विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, किसी भी परिस्थिति में रहे सुखायते, हमेशा सुखी है वो, क्योंकि वो देख रहा है हर एक जगह भगवान की कृपा को ही देख रहा है, पर हर एक परिस्थिति में। ओके, बहुत समय हो गया, तो सार में इस तरीके से जब दृष्टिकोण रखेंगे, तब हम चाहे हमारे जीवन में आए, किसी और के जीवन में आए, दुख होता है पर साइमल्टेनियसली आनंद भी होता है कि भगवान उसको खास कृपा देके उसको जल्दी ले रहे हैं भगवान की उनकी सेवा में, शायद जरूरी है कहीं उसको, इसीलिए फटाफट ले गए उसको। ठीक है, और हमारा कर्तव्य हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। शिशि निताय गौर चंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदी।